एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
My strong tower. Lord, in those tough times, those difficult moments, Lord, those stormy situations in my life, and I can call on you, Father, for being always there for me. From the bottom of my heart, I can say, thank you, Lord. Thank you, Lord.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम सब तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और हमें समझ शक्ति दे, ताकि हम तेरे वचनों को सुने और समझ सके और हमें तेरे राह में चलने के लिए मदद कर पिता। मेरे श्रोताओं के संग पिता, विशेष रूप से उन्हें आशीष दे, तेरे वचन को सुन करके बहुतायत से आशीष पाने सके और तेरे राह में चलने सके। पिता मेरे संग हो, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है, हमें क्या मिलेगा। हम मत्ती 19 का 16 से 30 में यह वचन पाते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तो मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। यह बात हम इस बाइबल पदस्थलों में पाते हैं। और प्यारों, आज का हमारा विशेष ध्यान केंद्र मत्ती 19 का 27 से 29 पद पर रहेगा। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पत्रस उद्धारकर्ता के शब्दों द्वारा उत्पन्न गुप्त विश्वास से उभरने वाला पहला व्यक्ति था। उसने संतोष के साथ सोचा कि उसने और उसके भाइयों ने मसीह के लिए क्या त्याग किया है। उसने कहा, देखो, हमने सब कुछ त्याग दिया है और तेरे पीछे हो लिया है। युवा शासक के किए गए सशर्त वादे को याद करते हुए, तुम्हें स्वर्ग में खजाना मिलेगा, उसने अब पूछा कि उसे और उसके साथियों को उनके बलिदानों के लिए इनाम के रूप में क्या मिलेगा। उद्धारकर्ता ने उसे उत्तर दिया, और उद्धारकर्ता के उत्तर ने उन गलीली मछुआरों के दिलों को रोमांचित कर दिया। इसने उन सम्मानों को चित्रित किया जो उनके उच्चतम सपनों को पूरा करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे आए हो, पुनर्जन्म में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और उसने आगे कहा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या पिता या माँ या पत्नी या बच्चों या जमीनों को छोड़ दिया है, लेकिन उसे अब इस समय 100 गुना घर और भाई उन्हें मिलेंगे, बहनों, माताओं, बच्चों और भूमियों को उन्हें प्राप्त होगा, और परलोक में उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन पतरस के सवाल, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ने एक ऐसी भावना को प्रकट किया था कि अगर शिष्यों को सुधारा नहीं गया तो वे मसीह के लिए संदेशवाहक बनने के योग्य नहीं होंगे, क्योंकि यह एक मजदूर की भावना थी। हालांकि वे यीशु के प्रेम से आकर्षित थे, लेकिन शिष्य फरीसीवाद से पूरी तरह मुक्त नहीं थे। वे अभी भी अपने श्रम के अनुपात में इनाम पाने के विचार से काम कर रहे थे। वे आत्म प्रशंसा और आत्म संतुष्टि की भावना रखते थे और आपस में तुलना करते थे। जब उनमें से कोई किसी विशेष चीज में विफल होता तो दूसरे श्रेष्ठता की भावना में लिप्त हो जाते। ताकि शिष्य सुसमाचार के सिद्धांतों को भूल ना जाए, इसलिए मसीह ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया जिसमें बताया गया था कि परमेश्वर अपने सेवकों के साथ किस तरह व्यवहार करता है और वह किस भावना से चाहता है कि वे उसके लिए काम करें। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य एक गृहस्थ के समान है जो सुबह सुबह अपने अंगूर के बगीचे में मजदूरों को काम पर रखने के लिए निकल पड़ा। रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए बाजारों में इंतजार करना आम बात थी और मालिक वहां नौकरों को ढूंढने जाते थे। दृष्टांत में आदमी को अलग अलग समय पर कामगारों को काम पर रखने के लिए बाहर जाते हुए दिखाया गया है। जो लोग पहले घंटों में काम पर रखे जाते हैं वे एक निश्चित राशि पर काम करने के लिए सहमत होते हैं। जो बाद में काम पर रखे जाते हैं वे अपनी मजदूरी गृहस्थ के विवेक पर छोड़ देते हैं। जब शाम हुई तो दाख की बारी के स्वामी ने अपने प्रबंधक से कहा, मजदूरों को बुलाओ और उन्हें आखिरी से लेकर पहले तक उनकी मजदूरी दो। और जब वे आए जो 11वें घंटे के करीब मजदूर थे तो उन्हें हर एक को एक पैसा मिला। लेकिन जब पहले आए तो उन्होंने सोचा कि उन्हें ज़्यादा मिलना चाहिए था और उन्होंने भी हर एक को एक पैसा दिया। गृह स्वामी का अपने क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ व्यवहार दाख की बारी मानव परिवार के साथ परमेश्वर के व्यवहार को दर्शाती है। यह मनुष्यों के बीच प्रचलित रीति रिवाजों के विपरीत है। संसारिक व्यापार में किए गए काम के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। मजदूर को केवल उतना ही भुगतान मिलने की उम्मीद होती है जितना वह कमाता है। लेकिन दृष्टांत में मसीह अपने राज्य के सिद्धांतों का चित्रण कर रहे थे। एक ऐसा राज्य जो इस दुनिया का नहीं है, वह किसी भी मानवीय मानक द्वारा नियंत्रित नहीं है। प्रभु कहते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग है, क्योंकि जैसा आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसा ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं, कहता है यशया 55:8-9। दृष्टांत में पहले मजदूर एक निर्धारित राशि पर काम करने के लिए सहमत हुए और उन्हें निर्दिष्ट राशि ही मिली, इससे अधिक कुछ नहीं। बाद में काम पर रखे गए लोगों ने मालिक के वादे पर विश्वास किया, जो कुछ भी सही है वह तुम्हें मिलेगा। उन्होंने मजदूरी के संबंध में कोई सवाल ना पूछकर उस पर अपना भरोसा दिखाया। उन्होंने उसके न्याय और निष्पक्षता पर भरोसा किया। उन्हें उनके श्रम की मात्रा के अनुसार नहीं बल्कि उसके उद्देश्य की उदारता के अनुसार पुरस्कृत किया गया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें जो अधर्मियों को धर्मी ठहराता है। उसका इनाम हमारी योग्यता के अनुसार नहीं बल्कि उसके अपने उद्देश्य के अनुसार दिया जाता है, जिसे उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में ठहराया। इफिसियों 3:11 कहता है, हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कामों के कारण नहीं बल्कि अपनी दया के अनुसार उसने हमें बचाया। हम पढ़ते हैं तीतुस 3:5 में, और जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उनके लिए वह हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक बहुतायत से करेगा, कहता इफिसियों 3:20। काम की मात्रा या उसके प्रत्यक्ष परिणाम नहीं बल्कि जिस भावना से काम किया जाता है वह उसे परमेश्वर के लिए मूल्यवान बनाता है। जो लोग आखिरी घंटे में दाख की बारी में आए वे काम करने के अवसर के लिए आभारी थे। उनका दिल उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भरा था जिसने उन्हें स्वीकार किया था। और जब दिन के अंत में गृहस्वामी ने उन्हें पूरे दिन के काम के लिए भुगतान किया तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा वेतन नहीं कमाया है और उनके मालिक के चेहरे पर दिखाई देने वाली दयालुता ने उन्हें खुशी से भर दिया। वे घर के मालिक की भलाई या उन्हें मिले उदार मुआवजे को कभी नहीं भूले। ऐसा ही पापी के साथ होता है जो अपनी अयोग्यता को जानते हुए भी आखिरी घंटे में स्वामी की दाख की बारी में प्रवेश करता है। उसकी सेवा का समय बहुत कम लगता है। उसे लगता है कि वह पुरस्कार के लायक नहीं है, लेकिन वह इस बात से खुश है कि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। वह एक विनम्र भरोसेमंद भावना के साथ काम करता है। मसीह के साथ सहकर्मी होने के विशेष अधिकार के लिए आभारी है। इस भावना का सम्मान करने में परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु चाहते हैं कि हम बिना किसी सवाल के उनके साथ विश्राम करें कि हमें किस हद तक इनाम मिलेगा। जब मसीह आत्मा में वास करते हैं तो इनाम का विचार सबसे ऊपर नहीं होता। यह वह मकसद नहीं है जो हमारी सेवा को प्रेरित करता है। यह सच है कि एक अधीनस्थ अर्थ में हमें इनाम के प्रतिफल का सम्मान करना चाहिए। ईश्वर चाहता है कि हम उसके वादे किए गए आशीर्वाद की सराहना करें, लेकिन वह नहीं चाहता कि हम इनाम के लिए उत्सुक हों और ना ही यह महसूस करें कि हर कर्तव्य के लिए हमें प्रतिफल मिलना चाहिए। हमें इनाम पाने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए चाहे कोई भी लाभ हो। हमें सही काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। परमेश्वर और अपने साथियों के प्रति प्रेम हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह दृष्टांत उन लोगों को क्षमा नहीं करता जो श्रम करने के लिए पहली पुकार सुनते हैं, लेकिन जो प्रभु की दाख की बारी में प्रवेश करने की उपेक्षा करते हैं। जब गृह स्वामी 11वें घंटे में बाजार में गया और उसने लोगों को बेरोजगार पाया तो उसने कहा, तुम यहाँ सारा दिन बेकार क्यों खड़े हो? जवाब मिला, क्योंकि किसी ने हमें काम पर नहीं रखा है। दिन में बाद में बुलाए गए लोगों में से कोई भी सुबह वहाँ नहीं था। उन्होंने बुलावे का अस्वीकार नहीं किया था। जो लोग मना करते हैं और बाद में पछताव करते हैं, वे पछताव करके अच्छा करते हैं, लेकिन दया की पहली पुकार को हल्के में लेना सुरक्षित नहीं है। जब अंगूर के बगीचे में काम करने वाले मजदूरों को हर एक को एक पैसा मिला तो वे लोग नाराज हो गए जिन्होंने सुबह सुबह काम शुरू कर दिया था। उन्होंने तर्क किया कि क्या उन्होंने 12 घंटे काम नहीं किया था, और क्या यह सही नहीं था कि उन्हें उन लोगों से ज्यादा मिले जिन्होंने दिन के ठंडे हिस्से में सिर्फ 1 घंटा काम किया था। उन्होंने कहा, इन लोगों ने सिर्फ 1 घंटा काम किया है और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया है जिन्होंने दिन भर का बोझ और गर्मी झेली है। मित्र, गृहस्वामी ने उनमें से एक को उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे एक पैसे के लिए सहमत नहीं हुए? जो तुम्हारा है उसे ले लो और जाओ। मैं इस अंतिम को भी उतना ही दूंगा जितना तुम्हें दे रहा हूँ। क्या यह मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं अपने से जो चाहूँ करूँ? क्या तुम्हारी नज़र बुरी है क्योंकि मैं अच्छा हूँ? इसी प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वे अंतिम होंगे, क्योंकि बुलाए तो बहुत होंगे परंतु चुने हुए थोड़े होंगे। यह बाइबल के वचन कहती है। तो प्यारों, हम इस दृष्टांत में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि उसके साथ काम करना बहुत बहुमूल्य है। काम करने का जो अवसर मिलता उसके प्रति हमें धन्यवादी होना चाहिए और हमें पुरस्कार के लिए उद्देश्य करके नहीं करना चाहिए, परंतु परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होकर और उसे प्रेम करते हुए हमें काम करना चाहिए। परमेश्वर न्यायी है, वह हमें जो हमारा प्रतिफल है वह हमें देंगे। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और परमेश्वर दयालु है, वह जिन लोगों को आखिरी में बुलाया गया था वे थोड़े समय के लिए काम किए, उन्हें भी वह पूरा पैसा दिया। इस दुनिया में हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बुलाता है उसके मार्ग में चलने के लिए, उसे काम करने के लिए। हम जब भी बुलाए जाते हैं हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो लोग पहले बुलाए गए हैं उन्हें पूरे दिल से आखिरी तक करना चाहिए, और जो अंतिम में बुलाए गए हैं उन्हें धन्यवादी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें उसके सेवा में भाग लेने का मौका दिया है। और हमें घमंड नहीं होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति दया करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए, और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वह हम पर दया करता है और हमें अपने राज्य में अपने काम के लिए बुलाता है। प्यारों, आप सबों को परमेश्वर बुलाता है। और हमें भी बुलाता है। आइए हम उसके रास्ता में आए, उससे प्रेम करें और उसके काम में सौभाग्य हो। परमेश्वर आप सबों को और हमें बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम तुझे इस संवाद के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। तू हम सबों को ग्रहण कर, तू हमें बुलाया है। हम तेरे दाख की बारी में काम करने के लिए उत्सुक हो और हम तुझे धन्यवाद दे, तू हमें बुलाता है। तो हम सबों को तेरा दया के अनुसार बहुतायत से प्रतिफल देगा। पिता परमेश्वर, हमें तेरे हाथ को पकड़ करके तेरे साथ काम करने के लिए तेरा आत्मा का सहयोग दे। तो यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जा करके सुना ग्रहण करे। आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।